एकत्रा ज्ञान गोष्ठी आज की जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान।
आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं।
हाँ, वो सवाल जो अक्सर खेल की दुनिया में, खिलाड़ियों के मन में, हम सबके मन में आता है कि जो महान एथलीट्स होते हैं वो क्या पैदा होते हैं या फिर उन्हें बनाया जाता है।
बिल्कुल, मतलब क्या ये सब कुछ जीन्स का खेल है या फिर जो कड़ी मेहनत होती है, जो अभ्यास होता है, उसका नतीजा है।
सही, ये नेचर बनाम नर्चर वाली बहस तो खैर काफी पुरानी है
जी,
और इसी को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए आज हम डेविड एप्सटीन की एक काफी मशहूर किताब है, द स्पोर्ट्स जीन इनसाइड द साइंस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एथलेटिक परफॉर्मेंस, उसके कुछ खास विचारों पर बात करेंगे।
और देखिए, ये किताब आज के समय में इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि एक तरफ तो हम किसी महान खिलाड़ी को देखते हैं तो लगता है वाह क्या टैलेंट है,
हाँ, एकदम नेचुरल लगता है।
बिल्कुल, और दूसरी तरफ वो मैल्कम ग्लैडवेल का 10,000 घंटे का नियम,
जैसे बात है।
हाँ, वो तो बहुत ही पॉपुलर हुआ। हाँ, तो उसे सुनकर लगता है कि शायद कोई भी बस घंटों प्रैक्टिस करके किसी भी फील्ड में टॉप पर पहुंच सकता है।
जैसे कोई जादू की छड़ी हो, 10,000 घंटे लगाओ और बस चैंपियन बन जाओ।
एग्जैक्टली। पर क्या खेलों में ये इतना सीधा है? एप्सटीन की किताब इसी पर विज्ञान की नजर से देखती है और बताती है कि कहानी थोड़ी ज्यादा पेचीदा है।
अच्छा।
हाँ, ये या तो ये या वो नहीं है, बल्कि ये और वो वाली बात है, जीन्स और मेहनत दोनों का मेल।
तो चलिए पहले ये जानते हैं कि ये डेविड एप्सटीन हैं कौन, मतलब इनकी बात में वजन क्यों है।
देखिए, डेविड एप्सटीन सिर्फ एक लेखक नहीं है। जब उन्होंने ये किताब लिखी, वो स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड जैसी बहुत बड़ी मैगजीन के सीनियर राइटर थे।
अच्छा।
और उन्होंने खेल विज्ञान, मेडिसिन, ओलंपिक्स, इन सबको बहुत करीब से कवर किया है, तो वो खेल की दुनिया को आप कह सकते हैं अंदर से जानते हैं।
मतलब फील्ड का अनुभव है।
जी, और उनकी पढ़ाई भी देखिए, पर्यावरण विज्ञान और पत्रकारिता में मास्टर्स डिग्री है। और सबसे दिलचस्प बात
क्या,
वो खुद कॉलेज लेवल पर एक अच्छे खासे धावक रह चुके हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ट्रैक और क्रॉस कंट्री रनर थे।
अरे वाह, ये तो कमाल है। मतलब विज्ञान भी समझते हैं, खेल की दुनिया को भी जानते हैं और खुद एथलीट भी रहे हैं।
बिल्कुल, और यही कॉम्बिनेशन उन्हें खास बनाता है। वो मुश्किल जेनेटिक रिसर्च को समझ पाते हैं, उसे आसान भाषा में समझा सकते हैं और फिर उसे असली खिलाड़ियों की कहानियों से जोड़ पाते हैं।
सही।
वो सिर्फ आंकड़ों या सिर्फ किस्सों पर नहीं चलते, बल्कि दोनों को मिलाते हैं, एक बैलेंस्ड नजरिया देते हैं जो सबूतों पर आधारित है।
तो फिर अगर इस पूरी किताब का सार बताना हो, एक निचोड़, तो वो क्या होगा?
संक्षेप में कहें तो ये किताब खोजती है कि आखिर ये असाधारण एथलीट बनते कैसे हैं। ये उन आम धारणाओं से आगे जाती है, जैसे कि बस मेहनत करो सब हो जाएगा।
हाँ, जो अक्सर सुनने को मिलता है।
जी, ये एक वैज्ञानिक और आप कह सकती हैं बारीक समझ देती है। एप्सटीन दिखाते हैं कि टॉप लेवल का प्रदर्शन असल में हमारी जेनेटिक बनावट यानी हमारी जीन्स और हमारा माहौल, जिसमें ट्रेनिंग, अभ्यास, मौके सब कुछ आता है, इनके बीच एक बहुत ही गहरा, एक बहुत जटिल रिश्ता है। ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, अलग नहीं हैं।
अच्छा, तो ये जो 10,000 घंटे वाला नियम था, क्या एप्सटीन उसे पूरी तरह नकार देते हैं?
पूरी तरह नकारते नहीं हैं, लेकिन उसे एक जरूरत से ज्यादा सरल बना देना मानते हैं, ओवर सिंप्लीफिकेशन।
अच्छा।
उनका मेन तर्क ये है कि हमारे जीन्स हमें एक तरह का हार्डवेयर देते हैं।
हाँ,
हमारी शारीरिक क्षमता की एक बेसिक रूपरेखा।
हार्डवेयर जैसे कंप्यूटर में होता है।
हाँ, बिल्कुल। सोचिए, कंप्यूटर का प्रोसेसर, रैम, ग्राफिक्स कार्ड, ये तय करते हैं ना कि वो कंप्यूटर क्या कर सकता है।
हाँ,
वैसे ही हमारे शरीर के लिए ये हार्डवेयर है। हमारी कद काठी, हड्डियों का ढांचा, हमारी मसल्स किस तरह की हैं, फास्ट ट्विच या स्लो ट्विच, हमारी बॉडी ऑक्सीजन कैसे इस्तेमाल करती है, जिसे VO2 मैक्स कहते हैं,
ओके,
यहाँ तक कि हमारी नजर कितनी तेज है, ये सब हार्डवेयर का हिस्सा है।
समझ गया। तो फिर सॉफ्टवेयर क्या हुआ?
अभ्यास, ट्रेनिंग।
एग्जैक्टली।
अभ्यास, ट्रेनिंग, सही तकनीक सीखना, खेल की समझ बढ़ाना, स्ट्रैटेजी बनाना, ये सब वो सॉफ्टवेयर है जो हम उस हार्डवेयर पर इंस्टॉल करते हैं।
ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाली एनालॉजी तो बहुत अच्छी है। मतलब दुनिया का बेस्ट सॉफ्टवेयर भी पुराने या गलत हार्डवेयर पर ठीक से नहीं चलेगा।
बिल्कुल।
और कितना भी बढ़िया हार्डवेयर हो, बिना सही सॉफ्टवेयर के वो बेकार है।
सही कहा। जैसे आप लेटेस्ट वीडियो गेम किसी 10 साल पुराने कंप्यूटर पर चलाने की कोशिश करें तो वो चलेगा ही नहीं या बहुत अटकेगा।
हाँ हाँ।
और दूसरी तरफ एक सुपर कंप्यूटर भी बिना ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम्स के बस एक महंगा डिब्बा है।
सही बात है।
तो किताब का जो मूल सवाल है कि टॉप एथलीट कैसे बनता है, उसका जवाब यही है कि कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा किसी भी खेल में बस घंटों पसीना बहाकर चैंपियन बन ही जाएगा। सफलता असल में हर इंसान के लिए उसकी अपनी जेनेटिक लॉटरी और उसे मिलने वाले मौके, ट्रेनिंग, माहौल का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है।
ठीक है, तो चलिए फिर उसी 10,000 घंटे वाले नियम से ही शुरू करते हैं। ये आया कहां से था और एप्स्टीन इसकी क्या कमियां बताते हैं?
देखिए, एप्स्टीन सीधे मैल्कम ग्लैडवेल ने जो इसे पॉपुलर बनाया उस पर सवाल उठाते हैं। वो ग्लैडवेल के सोर्स पर वापस जाते हैं, यानी एंडर्स एरिक्सन का जो ओरिजिनल रिसर्च था।
अच्छा, एरिक्सन का रिसर्च वो किस पर था?
वो बर्लिन में वायलिन बजाने वालों पर था। एप्स्टीन बताते हैं कि 10,000 घंटे कोई जादुई नंबर नहीं था, वो सिर्फ उन बेस्ट वायलिन वादकों का औसत प्रैक्टिस टाइम था जिन्होंने बचपन से शुरुआत की थी और जो पहले से ही काफी अच्छे माने जाते थे। एरिक्सन ने खुद कभी नहीं कहा कि ये सफलता की गारंटी है।
ओहो, तो ग्लैडवेल ने उसे एक तरह से कहानी बनाकर पेश कर दिया।
हाँ, एक आकर्षक कहानी जो लोगों को पसंद आई और चल निकली।
लेकिन खेलों में इसे लागू करने में खास दिक्कत क्या है? संगीत या शतरंज से खेल कैसे अलग हैं?
खेलों में, खासकर फिजिकल स्पोर्ट्स में, कुछ शारीरिक जरूरतें होती हैं। एप्स्टीन उन्हें नॉन निगोशिएबल कहते हैं।
नॉन निगोशिएबल मतलब?
मतलब जिनके बिना आप एक लेवल से आगे जा ही नहीं सकते, चाहे आप लाखों घंटे प्रैक्टिस कर लें। जैसे कोई 5 फुट का इंसान कितनी भी बास्केटबॉल खेल ले, वो NBA में सेंटर पोजीशन पर खेलने वाले लगभग 7 फुट के खिलाड़ी से कैसे मुकाबला करेगा?
हाँ, ये तो है।
जरूरी है, क्योंकि वो तय करता है कि आप कितनी जल्दी सीखते हैं, प्रैक्टिस के हर घंटे का आपको कितना फायदा मिलता है और शायद आपकी क्षमता की ऊपरी सीमा क्या है। और यहीं पर वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाली बात फिर से काम आती है। तो हार्डवेयर में और क्या क्या गिन सकते हैं, कुछ और उदाहरण?
जरूर। हार्डवेयर मतलब वो शारीरिक क्षमताएं जो काफी हद तक जीन से तय होती हैं, जैसे आपकी ऊंचाई, आपके हाथ पैरों की लंबाई। बास्केटबॉल में लंबे हाथ फायदेमंद हैं, जिम्नास्टिक्स में छोटा कद।
सही।
फिर आपकी मसल्स के फाइबर, कुछ लोगों में विस्फोटक ताकत वाले फास्ट ट्विच फाइबर ज्यादा होते हैं जैसे स्प्रिंटर्स में। कुछ में सहन शक्ति वाले स्लो ट्विच फाइबर जैसे मैराथन रनर्स में।
ओके।
आपकी VO2 मैक्स क्षमता, यानी शरीर ऑक्सीजन का कितना अच्छा इस्तेमाल करता है, ये मैराथन जैसे खेलों के लिए बहुत जरूरी है।
हाँ।
सोचिए जैसे गाड़ी का माइलेज होता है ना।
हाँ, वैसा ही कुछ। ये सब हार्डवेयर है जो तय करता है कि कौन सा शरीर किस खेल के लिए ज्यादा फिट है।
और सॉफ्टवेयर यानी अभ्यास और ट्रेनिंग का क्या रोल है फिर?
सॉफ्टवेयर वो है जो हम इस हार्डवेयर पर इंस्टॉल करते हैं। प्रैक्टिस से हम तकनीक सीखते हैं, जैसे क्रिकेट में कवर ड्राइव कैसे मारना है। खेल की समझ बढ़ती है, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। लेकिन जैसा हमने कहा, बेस्ट सॉफ्टवेयर भी गलत हार्डवेयर पर नहीं चलेगा, और बेस्ट हार्डवेयर भी बिना सही सॉफ्टवेयर यानी सालों की सही ट्रेनिंग, कोचिंग, अनुभव के अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा।
यह बिल्कुल साफ हो गया। अच्छा, हार्डवेयर की बात चल रही है तो किताब में एक और बड़ा दिलचस्प टर्म है, शारीरिक बनावट का बिग बैंग। ये क्या चीज है?
हाँ, बिग बैंग ऑफ बॉडी टाइप्स। ये जुड़ा है एंथ्रोपोमेट्री से, यानी इंसान के शरीर के माप का विज्ञान। एप्स्टीन का तर्क है कि जैसे जैसे खेल ज्यादा पॉपुलर, प्रोफेशनल और ग्लोबल हुए हैं, एक तरह का सेल्फ सिलेक्शन हुआ है।
सेल्फ सिलेक्शन मतलब खिलाड़ियों ने खुद ही चुन लिया कि वो किस खेल के लिए बने हैं?
एक तरह से हाँ, वो धीरे धीरे उन खेलों की तरफ खिंचते गए जो उनके शरीर की बनावट के लिए सबसे सही थे।
तो ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग ने उन्हें वैसा बनाया, बल्कि वैसे लोग ही उन खेलों में ज्यादा सफल हुए।
एग्जैक्टली। नतीजा ये हुआ कि पिछले कुछ दशकों में अलग अलग खेलों में बहुत ही स्पेसिफिक बॉडी टाइप्स हावी होने लगे हैं। जैसे आज के टॉप तैराक अक्सर बहुत लंबे होते हैं, उनके हाथ उनकी हाइट के मुकाबले और भी लंबे होते हैं। माइकल फेल्प्स एक क्लासिक उदाहरण है।
हाँ, उनका विंग स्पैन काफी ज्यादा था।
जी, और टॉप जिम्नास्ट बिल्कुल छोटे और हल्के होते हैं। बास्केटबॉल और रोइंग में असाधारण रूप से लंबे खिलाड़ी दिखते हैं।
तो ये खेल का माहौल ही एक तरह से सही बॉडी टाइप वाले लोगों को चुन रहा है।
हाँ बिल्कुल, इसे आप एक तरह का आर्टिफिशियल सिलेक्शन कह सकते हैं जो बढ़ते कंपटीशन की वजह से हो रहा है। जिनके पास उस खेल के लिए सही हार्डवेयर है वो आगे बढ़ते हैं, बाकी धीरे धीरे पिछड़ जाते हैं। अब हार्डवेयर की बात हो ही रही है तो सीधे जीन्स की दुनिया में चलते हैं। किताब कुछ खास जीन्स को भी देखती है जिनका एथलेटिक प्रदर्शन से सीधा लिंक मिला है।
अच्छा, जैसे कि?
एक बहुत फेमस उदाहरण है ACTN3 जीन का। इसे कभी कभी मजाक में स्प्रिंट जीन भी कह देते हैं।
स्प्रिंट जीन?
हाँ, एप्स्टीन जमैका जाते हैं जो स्प्रिंटिंग में दुनिया पर राज करता है, और देखते हैं कि वहां के टॉप स्प्रिंटर्स में ये जीन कितना आम है। ये जीन एक खास प्रोटीन बनाता है जो सिर्फ फास्ट ट्विच मसल फाइबर में मिलता है, वही फाइबर जो पावर और स्पीड के लिए जरूरी है।
तो क्या जमैका के सभी स्प्रिंटर्स में ये होता है?
लगभग सभी टॉप जमैकन और वेस्ट अफ्रीकन मूल के स्प्रिंटर्स में इस जीन का पावर वाला वर्जन मिलता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये जीन दुनिया भर में बहुत से लोगों में होता है जो कभी स्प्रिंटर नहीं बनते।
ओह, अच्छा।
तो ये जीन अकेले सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन टॉप लेवल पर स्प्रिंटिंग के लिए ये शायद जरूरी हार्डवेयर का एक हिस्सा है।
ये तो वाकई दिलचस्प है। कोई और ऐसा ही उदाहरण शायद सहन शक्ति वाले खेलों से?
एक बहुत ही जबरदस्त कहानी है फिनलैंड के क्रॉस कंट्री स्कीयर ईरो मेंटेरेंटा की।
ईरो मेंटेरेंटा?
हाँ, उनमें एक बहुत ही रेयर जेनेटिक म्यूटेशन था। उसकी वजह से उनका शरीर सामान्य से कहीं ज्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाता था।
रेड ब्लड सेल्स मतलब खून में?
जी हाँ, इससे उनके खून में ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी आम लोगों से लगभग 50% ज्यादा थी।
50%? ये तो जैसे नेचुरल ब्लड डोपिंग हो गया।
बिल्कुल, जाहिर है इससे उन्हें एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में जबरदस्त फायदा मिला और उन्होंने कई ओलंपिक मेडल जीते। ये एक एक्सट्रीम उदाहरण है कि कैसे कभी कभी एक अकेला जिन भी किस्मत बदल सकता है।
कमाल है। अच्छा, और केनिया के जो कलिंजन रनर्स हैं, उनकी लगातार सफलता का क्या राज है? क्या उनमें कोई एक रनिंग जीन है?
एप्स्टीन ने इसकी भी काफी जांच पड़ताल की और उनका निष्कर्ष है कि कोई एक रनिंग जीन नहीं है।
तो फिर?
बल्कि कलिंजन धावकों की सफलता कई चीजों का एक साथ आना है, एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा।
परफेक्ट स्टॉर्म? क्या क्या शामिल है उसमें?
पहला, जेनेटिक्स। उनमें एक खास बॉडी टाइप की टेंडेंसी है। लंबे पतले पैर, खासकर घुटने से नीचे का हिस्सा हल्का होना, जो दौड़ने में एनर्जी बचाता है। दूसरा, माहौल। ज्यादा ऊंचाई पर पैदा होना और वहीं रहना, जिससे बॉडी नेचुरली ऑक्सीजन का बेहतर इस्तेमाल सीख जाती है। तीसरा, कल्चर। वहां दौड़ने को बहुत सम्मान दिया जाता है, बच्चे बचपन से ही मीलों दौड़ते हैं। चौथा, आर्थिक प्रेरणा। दौड़ने में सफलता गरीबी से निकलने का एक बड़ा जरिया है।
तो मतलब जीन्स, माहौल, कल्चर, मोटिवेशन, सब कुछ मिला हुआ है।
बिल्कुल, ये जीन और पर्यावरण के तालमेल का एक बेहतरीन उदाहरण है।
किताब में एक और शब्द था, ट्रेनेबिलिटी। ये मैंने पहले ज्यादा नहीं सुना, इसका क्या मतलब है?
ट्रेनेबिलिटी, हाँ, इसका मतलब है कि एक ही तरह की ट्रेनिंग या कसरत का अलग अलग लोगों पर कितना अलग असर होता है।
अच्छा,
एक ही जिम रूटीन फॉलो करें तो जरूरी नहीं कि दोनों को एक जैसे रिजल्ट मिले। कुछ लोग उसी ट्रेनिंग से बहुत जल्दी फिट हो जाते हैं, उनकी ताकत बढ़ जाती है, उन्हें कहते हैं हाई रिस्पॉन्डर्स।
और कुछ
दूसरों पर उस ट्रेनिंग का बहुत कम या ना के बराबर असर होता है, वो है लो रिस्पॉन्डर्स।
और ये फर्क क्यों होता है? क्या ये सिर्फ डाइट या मेहनत में कमी बेशी की बात है?
नहीं, यहीं पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। बड़े बड़े स्टडीज हुए हैं, जैसे हेरिटेज फैमिली स्टडी।
हेरिटेज स्टडी?
जी, उसमें हजारों लोगों पर देखा गया कि एक जैसी कसरत का अलग अलग लोगों पर कितना अलग असर होता है, और पता चला कि ये ट्रेनेबिलिटी का फर्क काफी हद तक जेनेटिक है।
क्या मतलब, ये भी जीन्स पर निर्भर करता है कि हमें कसरत का कितना फायदा होगा?
हाँ, काफी हद तक हमारे जीन्स तय करते हैं कि हमारा शरीर ट्रेनिंग को कितना अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा।
ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब है कि आपकी मेहनत का असर कितना होगा, ये भी काफी हद तक आपकी जीन्स तय करते हैं।
बिल्कुल।
तो वो जो कहते हैं बस कड़ी मेहनत करो सफलता मिलेगी, वो शायद पूरी कहानी नहीं बता रहे।
हाँ, ये उस सीधी साधी सोच को चैलेंज करता है कि मेहनत एक ऐसा इनपुट है जिसका आउटपुट सबके लिए बराबर होगा। हमारे जीन्स एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। ये जानना शायद उन लोगों के लिए राहत की बात हो जो बहुत मेहनत के बाद भी मनचाहे नतीजे नहीं देख पाते।
बिल्कुल।
देखिए, एप्स्टीन सिर्फ शरीर की बात नहीं करते, वो एथलेटिक टैलेंट के दिमागी और अवधारणात्मक यानी परसेप्चुअल पहलू पर भी ध्यान देते हैं।
अच्छा, मतलब आंखें और दिमाग।
हाँ, हमारी आंखें और हमारा दिमाग कैसे रोल प्ले करते हैं।
वो कैसे? उनका जीन से क्या लेना देना?
वो क्वाइट आई के विज्ञान की बात करते हैं।
क्वाइट आई,
शांता। हाँ, ये देखा गया है कि टॉप लेवल के शूटर्स, बास्केटबॉल प्लेयर्स फ्री थ्रो लेते समय या गोल्फर्स शॉट लेने से ठीक पहले कुछ पल के लिए अपनी नजरें टारगेट पर एकदम स्थिर कर लेते हैं। ये क्षमता बेहतर एक्यूरेसी से जुड़ी है और इसमें भी एक जन्मजात टेंडेंसी हो सकती है। ये फोकस करने की दिमागी क्षमता है।
अच्छा, और बेसबॉल वाला उदाहरण भी था शायद।
हाँ, वो बेसबॉल हिटर्स की असाधारण विजुअल एक्यूरेसी, देखने की क्षमता और प्रोसेसिंग स्पीड की बात करते हैं। सोचिए, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती हुई घूमती हुई गेंद को देखना,
बाप रे,
उसकी दिशा का अंदाजा लगाना और फिर पलक झपकते ही फैसला करना कि बल्ला घुमाना है या नहीं और कहाँ घुमाना है,
ये आम इंसान की क्षमता से कहीं ज्यादा है।
तो ये सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं आता।
प्रैक्टिस से इसमें सुधार जरूर होता है, लेकिन इसकी नींव अक्सर जन्मजात परसेप्चुअल टैलेंट्स में होती है।
तो ये दिखाता है कि स्पोर्ट्स जीन का मतलब सिर्फ लंबी टांगे या मजबूत मसल्स नहीं है, इसमें वो न्यूरल हार्डवेयर यानी दिमाग की वायरिंग भी शामिल है जो हमें बेहतर अंदाजा लगाने, तेजी से फैसले लेने और बॉडी को बेहतर कंट्रोल करने में मदद करता है। हमारा दिमाग भी तो एक तरह का हार्डवेयर ही है।
वाह, तो इस पूरी मतलब जबरदस्त चर्चा के बाद अगर हम इस किताब से निकलने वाले मुख्य संदेशों को समेटें तो वो क्या होंगे? पहला तो शायद यही है कि नेचर और नर्चर यानी प्रकृति और पोषण एक दूसरे से जुड़े हैं, आप उन्हें अलग नहीं कर सकते।
बिल्कुल, वो बंदूक और ट्रिगर वाली बात। जीन बंदूक लोड करते हैं, माहौल और मेहनत ट्रिगर दबाते हैं। कलिंजन रनर्स इसका बेस्ट उदाहरण है। सही बॉडी टाइप, प्रकृति के साथ ऊंचाई वाला माहौल और दौड़ने का कल्चर।
दूसरा बड़ा सबक 10,000 घंटे का नियम, जैसा उसे समझा जाता है, वो एक बहुत बड़ा सरलीकरण है, खासकर खेलों के लिए। ये टैलेंट और फिजिकल लिमिट्स के रोल को अनदेखा करता है।
हाँ, भारत में ही देखिए, क्रिकेट एकेडमियों में हजारों बच्चे जाते हैं, सबको लगभग एक जैसी ट्रेनिंग मिलती है, पर कुछ ही आगे बढ़ पाते हैं। सिर्फ घंटों की गिनती काफी नहीं है।
सही बात। तीसरा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मॉडल एथलेटिक प्रदर्शन को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। यह हमें अपनी बायोलॉजिकल बनावट और सीखी हुई स्किल्स के बीच के रिश्ते को आसानी से समझने में मदद करता है।
बिल्कुल, और ये याद दिलाता है कि सफलता के लिए दोनों जरूरी हैं।
चौथा, आधुनिक खेलों में खास तरह के शारीरिक बनावट का बिग बैंग हुआ है। जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ा है, हर खेल के लिए एक खास बॉडी टाइप ज्यादा सफल होने लगी है।
जी,
बैडमिंटन में फुर्ती चाहिए, कुश्ती में ताकत।
हाँ।
पांचवा, ट्रेनेबिलिटी यानी अभ्यास से हमें कितना फायदा होगा, ये क्षमता भी काफी हद तक जेनेटिक है। ये उस सोच को चुनौती देता है कि सफलता सिर्फ और सिर्फ विल पावर और मेहनत का नतीजा है।
हाँ, ये जानना हमें खुद के प्रति और दूसरों के प्रति ज्यादा समझदार बना सकता है। जिम में या क्लब में हम देखते हैं ये।
बिल्कुल। और छठा, एथलेटिक टैलेंट सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये दिमागी और परसेप्चुअल भी है। अच्छी नजर, पैटर्न पहचानना, तेजी से फैसला लेना, ये सब भी बहुत जरूरी हैं और इनका भी जेनेटिक बेस हो सकता है।
सही कहा, क्रिकेट में गेंद के लाइन लेंथ जल्दी पढ़ लेना सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, शायद दिमागी हार्डवेयर का भी कमाल है।
किताब में कुछ बातें हैं जो एकदम दिमाग में बैठ जाती हैं। क्या हम कुछ ऐसे कोट्स या मुख्य विचारों को दोहरा सकते हैं जो एप्स्टीन के नजरिए को अच्छी तरह बताते हों?
जरूर। पहला, जो शायद पूरी किताब का एसेंस है, अभ्यास वो सॉफ्टवेयर है जो हमारे जेनेटिक हार्डवेयर को चलाता है। सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर भी गलत हार्डवेयर पर नहीं चल सकता और सबसे अच्छा हार्डवेयर भी बिना सॉफ्टवेयर के बेकार है।
हाँ, मतलब साफ है, टैलेंट और मेहनत दोनों चाहिए, एक दूसरे के साथी हैं, दुश्मन नहीं।
बिल्कुल। दूसरा, 10,000 घंटे वाले नियम पर। 10,000 घंटे का नियम जिस तरह उसे लोकप्रिय बनाया गया है, वो एक भ्रामक सरलीकरण है। ये जन्मजात प्रतिभा की भूमिका को अनदेखा करता है, जो न सिर्फ शुरुआती बिंदु तय करती है, बल्कि ये भी कि अभ्यास के हर घंटे से किसी को कितना लाभ मिलेगा।
ये याद दिलाता है कि सफलता का रास्ता हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता।
बिल्कुल। और एक तीसरा विचार जो मुझे काफी पॉजिटिव लगता है, हम सब अलग अलग क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं। कुंजी ये है कि हम वो काम या खेल ढूंढें जहां हमारी जेनेटिक प्रवृत्ति उस काम की जरूरतों से मेल खाती हो। सफलता अक्सर अपनी खास मछली के लिए सही तालाब ढूंढने जैसा है।
वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब दूसरों की नकल करने के बजाय खुद की ताकत पहचानो और उसे सही जगह लगाओ।
एग्जैक्टली।
तो इन सब बातों का हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, हम इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर पेरेंट्स, कोच या हम जैसे आम लोग?
देखिए, कई तरीके हैं। पेरेंट्स और कोच के लिए ये किताब एक बहुत जरूरी बात कहती है। बच्चों को बहुत छोटी उम्र में ही किसी एक खेल में झोंकने से बेहतर है कि उन्हें शुरुआती सालों में कई तरह के खेल ट्राई करने दें, जिसे सैम्पलिंग पीरियड कहते हैं।
अच्छा, मतलब अलग अलग चीजें ट्राई करने का मौका देना।
जी, इससे उन्हें खुद ये खोजने में मदद मिलती है कि कौन सा खेल उनके शरीर, उनकी पसंद, उनके टैलेंट से मेल खाता है। और हाँ, ट्रेनेबिलिटी के फर्क को ध्यान में रखते हुए एक बच्चे की प्रोग्रेस की तुलना दूसरे से करना ठीक नहीं। हर बच्चा अपनी रफ्तार से सीखता है।
ये बहुत जरूरी बात है। और जो लोग खुद खेलते हैं, चाहे प्रोफेशनल हो या शौकिया,
उनके लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना, क्या आप स्प्रिंट में अच्छे हैं या लंबी दौड़ में, इससे ट्रेनिंग को बेहतर बनाने में मदद मिलती है या शायद अपने लिए सही खेल या पोजीशन चुनने में। और अगर मेहनत के बावजूद नतीजे धीरे आ रहे हैं, तो ये समझना कि आप शायद जेनेटिक रूप से लो रिस्पोंडर हो सकते हैं, आपको बेवजह की फ्रस्ट्रेशन से बचा सकता है।
हाँ, और आप अपनी उम्मीदें थोड़ी रियलिस्टिक रख सकते हैं।
बिल्कुल।
और हम जैसे आम लोग जो बस फिट रहना चाहते हैं या कभी कभार खेलते हैं,
ट्रेनेबिलिटी वाली बात यहाँ भी लागू होती है। ये समझाता है कि क्यों आप और आपका दोस्त एक ही डाइट और जिम प्लान फॉलो करते हुए भी वजन घटाने या मसल बनाने में अलग अलग नतीजे पा सकते हैं।
हाँ, ये तो अक्सर होता है।
जी, तो ये ज्ञान हमें फ्रस्ट्रेशन और खुद को दोष देने से बचा सकता है और हमें उन एक्टिविटीज को खोजने के लिए एनकरेज करता है जिन्हें हम इंजॉय करते हैं और जिन पर हमारी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, बजाय इसके कि हम आंख बंद करके किसी लेटेस्ट फिटनेस ट्रेंड के पीछे भागे जो शायद हमारे लिए बना ही ना हो।
ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। तो इस किताब से सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? मेरे लिए तो वो समीकरण है, टैलेंट हार्डवेयर इनटू अभ्यास सॉफ्टवेयर बराबर हुनर स्किल। अगर इनमें से कोई एक जीरो है तो नतीजा भी जीरो।
बिल्कुल, दोनों का गुणा होना जरूरी है। ये हमें नेचर बनाम नर्चर की बहस से निकालकर नेचर और नर्चर के संगम तक ले जाता है।
हाँ।
और मेरे लिए एक बड़ा टेक अवे ये है कि जब हम किसी महान एथलीट को देखते हैं, तो हमें सिर्फ उनकी मेहनत और लगन ही नहीं देखनी चाहिए, बल्कि उन अनदेखे बायोलॉजिकल फायदों यानी सही हार्डवेयर और उस सही माहौल यानी सही मौके, कोचिंग, सपोर्ट को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए जिसने उनकी मेहनत को कामयाबी में बदला।
सही।
ये उनकी मेहनत को कम नहीं करता।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
बल्कि उसे एक ज्यादा विस्मयकारी संदर्भ देता है। हर महान एथलीट अपनी यूनिक जेनेटिक विरासत और सालों की समझदार मेहनत का एक जीता जागता सबूत है।
मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात ट्रेनेबिलिटी का आइडिया था, कि हमारी मेहनत का फल कितना मिलेगा ये भी काफी हद तक पहले से तय हो सकता है। ये वाकई कोशिश और सफलता को देखने का नजरिया बदल सकता है।
और मेरे लिए ईरो मैंटेरिंटा जैसी कहानियाँ याद दिलाती हैं कि नेचर कभी कभी कितनी पावरफुल हो सकती है, और कैलेंजन रनर्स का उदाहरण दिखाता है कि नेचर और नर्चर मिलकर क्या कमाल कर सकते हैं। ये पूरी तस्वीर को आसान जवाबों से कहीं ज़्यादा जटिल और ज़्यादा आकर्षक बनाता है। शायद अंत में सवाल ये नहीं कि हम दूसरों जैसे कैसे बने, बल्कि ये कि हम अपनी यूनिक क्षमताओं के साथ बेस्ट कैसे बने।
बिल्कुल सही कहा। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।